بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتاگرن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ کارکرم کا آرمبھ ہم سورہ حجرات کی 10ویں اور 11ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں، اور تلاوت کر رہے ہیں شری عبد الباسط۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ يا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرا دیا کرو، اور ایشور سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر دیا کی جائے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے کوئی گٹ دوسرے گٹ کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اچھے ہوں، اور نہ استریاں دوسری استریوں کی ہنسی اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے اچھی ہوں، اور آپس میں نہ ایک دوسرے پر ویانگ کرو، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے پشچات اوگیا کا نام ہی برا ہے، اور جو لوگ اس بات سے پشچاتاپ نہ کریں وہی اتیاچاری ہیں۔
دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9620 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 26 مارچ سے ہماری فریکوینسی بدل رہی ہے۔ اس طرح سے آپ ہمارے پروگرام کو کارکرم کو 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔ دوستوں آج شنیوار ہے، اسفن ماہ کی 27، مارچ کی 18 اور شابان کی 25 تاریخ۔ दोस्तों हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम ईरानी व्यंजन और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा अच्छी आदतें। तो दोस्तों ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ राष्ट्रपति का कहना है कि दुश्मन देश की शक्ति को निराशा और कमजोरी में बदलने का प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्री का कहना है कि तेहरान ने कूटनीतिक क्षेत्र में अहम सफलताएं अर्जित की हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोबेल पुरस्कार की फेक खबरें भारतीय मीडिया में खूब चली। پاکستان میں عمران خان کے سمرتھکوں اور پولیس کے بیچ جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں۔ اور اب آپ وستار سے اختر عباس سے سماچار سنیں۔ راشٹرپتی کا کہنا ہے کہ دشمن دیش کی شکتی کو نراشا اور کمزوری میں بدلنے کا پریاس کر رہا ہے۔ راشٹرپتی سعید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن نہیں چاہتا کہ دیش وکاس اور ترقی کرے اور جنتا اچھی خبر سنے۔ انہوں نے تہران میں کئی ریل یوجناؤں کو دیش کو سمرپت کرتے ہوئے تہران اور انیہ شہروں میں جنتا کی آواگمن کو آسان بنانے میں ہمیشہ مہتوپورن کاریہ کی بھومیکا کی الیکھنی کاریہ کی اور سنکیت کیا۔ انہوں نے میٹرو ٹرین کے وستار کی کوششوں کی سراہنا کی اور کہا کہ آج دشمن سماج میں نراشا مایوسی اور اکشمتا پھیلانے کا پریاس کر رہا ہے، لیکن ہم ایرانی راشٹر कर सकते हैं कि संस्कृति पर आस्था रखते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश का माहौल काम और प्रयास का माहौल है और उस प्रकार का माहौल निश्चित रूप से जनता के विश्वास और उसकी उनकी प्रसन्नता को हासिल करने का प्रयास करता है और देश के लिए शक्ति का उत्पादन करता है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि तेहरान को कूटनीतिक मैदान में बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं और क्षेत्र तथा पड़ोसी देशों के साथ सकारात्मक सहयोग का माहौल विस्तृत होता जा रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने डिप्लोमेटिक जश्न नौरोज के अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि ईरान ने कूटनीतिक मैदानों में अहम सफलताएं अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि हम नया ईरानी साल ऐसे समय में शुरू कर रहे हैं कि जब कूटनीति और डिप्लोमेट के क्षेत्र में एक के बाद दूसरी कई सफलताएं अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक जश्न नौरोज का आयोजन करने का मकसद ईरान में तैनात विदेशी कूटनयिकों और राजदूतों को ईरान की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से ज्यादा अवगत कराना है। ईरानी विदेश मंत्री का कहना था कि इस संबंध में बहुत से रिकॉर्ड यूनेस्को में दर्ज कराए गए हैं। इस्लामिक गणतंत्र ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें आपसी हित के विभिन्न मुद्दों सहित क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने तुर्क समकक्ष से फोन पर बात करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों के साथ सकारात्मक बातचीत के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी देशों के बीच समन्वय पैदा करने का रास्ता प्रशस्त होगा। इस बातचीत में तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद शाउश ओगलू ने भी ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। इस्लामिक गणतंत्र ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव एडमिरल अली शमखानी चीन और संयुक्त अरब इमारात का दौरा करने के बाद अब इराक का दौरा करेंगे। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव एडमिरल अली शमखानी का शीघ्र ही इराक का दौरा हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एडमिरल अली शमखानी की यात्रा चीन और संयुक्त अरब इमारात की यात्राओं के बाद तीसरी महत्वपूर्ण यात्रा है। अपनी इराक यात्रा के दौरान अली शमखानी दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने और इसे इस स्तर तक पहुंचाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के मार्गों के बारे में इराकी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरानी राजदूत ने मानवाधिकार परिषद की बैठक में 60 देशों के उस घोषणा पत्र को पढ़ा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रकार का भेदभाव और हिंसा न करने और इसी प्रकार धर्मों का और उसके मानने वालों का अपमान न करने पर बल दिया गया है। इसी प्रकार 60 देशों के इस घोषणा पत्र में मानवाधिकार परिषद से मांग की गई है कि वो इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। ज़ायनी संचार माध्यमों ने स्वीकार किया है कि इसराइल के बारे में दक्षिणी लेबनान के इस्लामी आंदोलन हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला का यह दृष्टिकोण व्यवहारिक हो रहा है कि इसराइल अंदर से खोखला है। ज़ायनी संचार माध्यमों ने रिपोर्ट दी है कि इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे हसन नसरुल्ला बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि इसराइल मकड़ी के जाले से भी कमजोर दृष्टिकोण उनकी नजरों के सामने व्यवहारिक हो रहा है। फिलिस्तीनी मीडिया सूत्रों ने फिलिस्तीनी युवक की शहादत की सूचना दी है। ये युवक वेस्ट बैंक के अलबीरा इलाके में फायरिंग से शहीद हुआ। स्पुतनिक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि ज़ायनी सैनिकों ने वेस्ट बैंक के रामल्ला इलाके में एक 23 वर्षीय फिलिस्तीनी युवक यजन उमर खसीब को गोली मारकर शहीद कर दिया। ज़ायनी रेडियो ने दावा किया कि फिलिस्तीनी युवा का इरादा इसराइली सैनिकों पर चाकू से हमला करने का था, जिसके जवाब में इसराइली सैनिकों ने उसे गोली मार दी। घायल होने के बाद युवक को अवैध अधिकृत बैतुल मुकद्दस के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। भारत के कई मीडिया संस्थानों ने बीते दिनों रिपोर्ट दी थी कि नोबेल पुरस्कार समिति के डिप्टी लीडर एस्ले टोजेन ने, जो इस वक्त भारत में हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार और दुनिया में शांति का सबसे विश्वसनीय चेहरा बताया है। इसके बाद कुछ लोग यहां तक कहने लगे कि पीएम मोदी के पुरस्कार जीतने की संभावना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट में लिखा कि नोबेल समिति के डिप्टी लीडर एस्ले टोजे ने कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पीएम मोदी बड़े दावेदार हैं। ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया। इकोनॉमिक टाइम्स ने कई ट्वीट्स में यही दावा किया। अब ये सभी ट्वीट्स डिलीट किए जा चुके हैं। एक ट्वीट में इकोनॉमिक टाइम्स ने दावा किया कि एस्ले टोजे ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया में शांति का सबसे विश्वसनीय चेहरा कहा है। यूपी में विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट के सख्त होने के बाद अब यूपी सरकार ने भी कड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने 650 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही कर्मचारी उपस्थित नहीं करा पाने पर 7 एजेंसियों पर केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली के समझौते में सुविधा पहुंचाने में भूमिका अदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने इस्लामाबाद में साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के बीच कूटनयिक संबंधों की बहाली का स्वागत किया है और इस ऐतिहासिक समझौते को कराने में चीन के तत्वदर्शी नेतृत्व की सराहना की है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि हमें विश्वास है कि यह कूटनयिक प्रगति क्षेत्र और इससे बाहर शांति और स्थिरता में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच कूटनयिक संबंध समान होने से क्षेत्रीय सहयोग और समन्वय का नमूना निर्धारित होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली मुलाकात इस्लामाबाद में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हुई थी। पाकिस्तान में तोशाखाना केस की सुनवाई में पेशी के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जबकि PTI ने पुलिस की ओर से काफिले पर भीषण फायरिंग का आरोप लगाया। उधर पुलिस ने PTI कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया है। ट्विटर पर जारी बयान में PTI ने दावा किया है कि पुलिस की ओर से श्रीनगर हाईवे पर PTI चेयरमैन इमरान खान पर हैवी फायरिंग की गई। कैपिटल पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में शिलिंग की जा रही है। पुलिस चौक को आग लगा दी गई है। उधर पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें अदालतें निरंतर बुला रही हैं लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कहा है कि चीन ने ईरान और सऊदी अरब के मध्य मध्यस्थता करके नई विश्व व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तरी कोरिया ने दावा किया है कि इस देश के लगभग 800,000 लोगों ने शुक्रवार तक अमेरिका से जंग करने के लिए स्वेच्छा से अपनी तत्परता की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से गैर कानूनी तरीके से बच्चों को रूस भेजा जा रहा है। साथ ही ICC ने पुतिन को युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आरोपों से इनकार किया है। रूस ने कहा है कि यह गिरफ्तारी वारंट महत्वहीन और अस्वीकार्य है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट का कानूनी दृष्टिकोण से देश के लिए कोई अर्थ नहीं है क्योंकि रूस 2016 में ICC संधि से निकल चुका है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे अवैध ज़ायोनी शासन के डूबते सूरज के बारे में।
दुनिया में अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं।
और फिर बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उस बयान की कि जिसमें उन्होंने किसी भी स्थिति में परमाणु कार्यक्रम बंद करने से इनकार कर दिया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां कश्मीर की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक जबान में केंद्र सरकार से तुरंत चुनाव कराए जाने की मांग की है।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के मेनस्ट्रीम
तो
तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ व्यापक होते विरोध प्रदर्शनों की। इस समय पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इसराइल में होने वाला परिवर्तन है। जिस अवैध ज़ायोनी शासन को दुनिया एक मजबूत शासन मान रही थी, अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी।
दुनिया में अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं और इस समय भी हो रही हैं, पर इन घटनाओं से कुछ ही लोग सीख लेते हैं। इस समय पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इसराइल में होने वाला परिवर्तन है। हालिया कई दिनों से ज़ायोनी और यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि बिन्यामिन नेतन्याहू एक अतिवादी ज़ायोनी हैं। इस समय इसराइल के जो हालात हैं, वे अपने अंदर बहुत सारे संदेश लिए हुए हैं। उसका एक संदेश यह है कि इसराइल दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से अपने अंत के निकट होता जा रहा है, और ये वो बिंदु है जिसकी ओर जानकार हल्के और खुद ज़ायोनी संचार माध्यम संकेत कर रहे हैं। ज़ायोनी संचार माध्यमों ने अभी गत रात ही स्वीकार किया है कि इसराइल के बारे में दक्षिणी लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह का यह दृष्टिकोण व्यवहारिक हो रहा है कि इसराइल अंदर से खोखला और वो मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। जिस वक्त सैयद हसन नसरुल्लाह ने ये बात कही थी, उस समय बहुत कम लोगों ने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया होगा, पर आज ज़ायोनी हलके और संचार माध्यम खुद ही उनकी बात को याद दिला रही हैं। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि ज़ायोनियों और यहूदियों की कोई भी सरकार 80 से अधिक साल न चल सकी। इस बात को दृष्टि में रखते हुए बहुत से ज़ायोनियों और यहूदियों का विश्वास है कि इसराइल की उम्र भी 80 साल से अधिक नहीं होगी। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि इसराइल के अंदर से ही हालात इस प्रकार के हो जाएंगे कि जिससे इसराइल का अंत हो जाएगा और उसे तबाह करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हलके दूसरे देशों व क्षेत्रों से इसराइल लाकर फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर बसा दिए गए ज़ायोनियों और यहूदियों के उल्टे पलायन को इसी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल इतनी तेजी से अपने अंत से निकट क्यों हो रहा है। जानकार हलकों का मानना है कि इसके बहुत से कारण हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण इसराइल का घोर अत्याचार है। 76 साल पहले अवैध ज़ायोनी शासन की बुनियाद मजलूम फिलिस्तीनियों के खून पर रखी गई। तब से लेकर आज तक इस अवैध शासन के अत्याचार अनवरत जारी हैं, और इन वर्षों में 1,00,000 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद और कई लाख घायल और बेघर हो गए। 40,00,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को इसराइल ने ताकत के बल पर उन्हें उनकी मातृभूमि से निष्कासित कर रखा है और उन्हें स्वदेश वापसी की अनुमति भी नहीं दे रहा है। रोचक बात यह है कि इसराइल के समस्त अपराधों पर मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले अर्थपूर्ण चुप्पी साधे रहते हैं, और मानवाधिकार की रक्षा का राग अलापने वाले देश व संगठन कभी भी नहीं कहते हैं कि 40,00,000 से अधिक निर्दोष फिलिस्तीनियों को स्वदेश वापसी की अनुमति दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 40,00,000 से अधिक लोगों के अधिकारों की अनदेखी व खनन है। जब से ज़ायोनी शासन की अवैध बुनियाद रखी गई है, तब से उसने जहां 1,00,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को शहीद किया है, उनमें बहुत सी महिलाएं और बच्चे भी हैं। इसी प्रकार इन वर्षों में इसराइल ने फिलिस्तीनियों के हजारों मकानों को ध्वस्त कर दिया, उनके खेतों और बागों को तबाह कर दिया। सारांश यह है कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर जो भी अत्याचार कर सकता था किया, और इसमें उसने किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया, और उसका नतीजा ये निकला कि पाप का घड़ा भर गया है और ज़ायोनी दुनिया से अत्याचार और सरकारी आतंकवाद पर आधारित शासन के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और अब चर्चा करते हैं परमाणु कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान के बारे में। शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारी परमाणु क्षमता पाकिस्तान की प्रतिरोधक शक्ति है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आईएमएफ से पैसों के बदले हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारी परमाणु क्षमता ही पाकिस्तान की प्रतिरोधक शक्ति है। पाकिस्तान की वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण इस देश को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के संचार माध्यमों में ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ से कर्ज लेने में इस्लामाबाद को अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने का आह्वान किया जा सकता है। आईएईए के महासचिव की हालिया पाकिस्तान की यात्रा के दौरान भी इस देश से परमाणु गतिविधियां रोक देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बारे में हर प्रकार की अफवाहों को विराम देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि परमाणु क्षमता पाकिस्तान की प्रतिरोधक शक्ति है। टीकाकार कहते हैं कि अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी अर्थात भारत के मुकाबले में पाकिस्तान अपनी प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करता रहा है। ये मामला पाकिस्तान की सेना के हाथ में है और इस देश की सरकार इस संबंध में कोई भी फैसला नहीं ले सकती। इस बारे में पाकिस्तान के मामले के जानकार मोहसिन कहते हैं कि तीन प्रमुख मुद्दे पाकिस्तान की सेना के हाथों में हैं, जिसमें वहां की सरकार को फैसला करने का कोई भी अधिकार नहीं है, जैसे अफगानिस्तान का मामला, कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियाँ। पाकिस्तान और भारत दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। वे पड़ोसी होने के साथ ही साथ एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी रहे हैं। वैसे तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही शीतकाल में परमाणु शक्ति संपन्न देश बने थे। उस समय भारत पूर्व ब्लॉक में था, जबकि पाकिस्तान पश्चिम ब्लॉक का हिस्सा हुआ करता था। अब शीत युद्ध तो समाप्त हो चुका है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में दो परमाणु संपन्न शक्तियां मौजूद हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति को अपनी अपनी प्रतिरोधक शक्ति के रूप में दर्शाते हैं, किंतु इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जिनमें से एक भारतीय उपमहाद्वीप में फैलती हुई निर्धनता। दोनों ही देश अपनी परमाणु शक्ति की सुरक्षा और उसकी देखरेख पर बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। ये बड़ा खर्चा उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। बढ़ती हुई निर्धनता दोनों देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति किसी से भी ढकी छिपी नहीं है। अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए इस समय पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता की बहुत जरूरत है। विदेशी दबाव से बचते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बारे में किसी भी फैसले से पहले राष्ट्रीय हितों को निश्चित रूप से दृष्टिगत रखना होगा।
और अब रुक करते हैं भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर में मोदी सरकार द्वारा चुनाव में की जाने वाली देरी पर इस राज्य के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक दलों का कहना है कि एक ओर सरकार ये दावा करती है कि कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य हैं और दूसरी ओर चुनाव कराने से परहेज कर रही है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के मेनस्ट्रीम दलों ने एक बार फिर नई दिल्ली से आह्वान किया है कि वो जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर विधानसभा के चुनाव कराएं, ताकि यहाँ के जनता अपने प्रतिनिधि चुने और वो लोगों के काम करें। श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और भूतपूर्व मंत्री सईद बशारत बुखारी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि मौजूदा रिजीम का ये कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस प्रशासन में पहली बार पर्यटक भी आ रहे हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि ये बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की के हर सतह पर पहुंचाया गया, परंतु जब चुनाव की बात आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने जरूरी बन गए हैं। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के मेनस्ट्रीम गुटों के तकरीबन 14 ऐसे दल हैं जो नई दिल्ली जाकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में चुनाव आयोग से भी मुलाकात हुए और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे, परंतु कोई डेट सामने न आने के सबब जितने भी मेनस्ट्रीम दल हैं उनमें तजबजुब है और वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव के हवाले से फौरी तौर पर अनाउंसमेंट की जाए। अपनी पार्टी ने भी नई दिल्ली को बार बार ये बावर कराने का प्रयास किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार जरूरी है, परंतु अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर चुनाव होंगे। अलबत्ता सूत्रों का ये कहना है कि जून के महीने में चुनाव की घोषणा हो भी सकती है।
सकती है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता ने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि उनके दल के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें दिल्ली की अध्यक्षता हासिल है, परंतु हम ही जानते हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
इलेक्शन तो 5 साल हो गए, शायद मेरे हिसाब से 5वां साल चल रहा है, और ये बदकिस्मती है जमहूरी अमल की, जमहूरियत की बदकिस्मती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बदकिस्मती है कि अगर आप खामखा इलेक्शन नहीं करेंगे, और आप कहना क्या चाहते हैं इलेक्शन न करवाने से, जो ही आपसे ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं, इक्तिसादियात कैसे हैं, नज्म नस्क कैसा चल रहा है, आप कहते हैं जनाब कभी ऐसा नहीं था, और कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि टूरिस्ट पहली बार कश्मीर आया, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि गुलमर्ग शायद अभी बना है, शायद डल अभी बना है, शायद पहलगाम भी इन्होंने बनाया, इस तरह की बातें करते हैं कि लगता है कि सब कुछ पहली बार हो रहा है, और कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। जब इलेक्शन की बारी आती है तो कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं कि जब इलेक्शन के लिए अभी माहौल नहीं है, तो माहौल कैसे अच्छा है जब आप लोगों को अपने हक की रायदेही का मौका नहीं फराहम करेंगे।
सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का यह दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा, और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, ईरानी व्यंजन।
ईरानी व्यंजन।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरानी व्यंजन की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
गिलान प्रांत का केंद्रीय नगर रश्त है। यह ईरान की हरी भरी उत्तरी पट्टी में स्थित है। अनेक कारणों और ख़ास तौर पर लज्जतदार तथा रंगारंग पकवानों की वजह से यह हमेशा सैलानियों से भरा रहता है। अगर गिलान को ईरान का सबसे स्वादिष्ट प्रांत कहा जाए तो गलत ना होगा। आइए आपको हम इस प्रांत की सैर पर ले चलते हैं।
खानों और पकवानों की विविधता सांस्कृतिक विविधता और उसकी मजबूती का चिन्ह है। इस इलाके में एक जगह के दस्तरखान दूसरी जगहों के दस्तरखान से बिल्कुल अलग हैं। ये विविधता अलग अलग स्वादों और खाने पीने के अलग अलग कल्चर की वजह से पैदा हुए हैं।
आज अगर खानों और पकवानों की बात की जाए तो इसकी किस्में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अलग अलग स्वाद और अलग अलग पसंद को आप एक साथ एक जगह पर देख सकते हैं। नए हालात में ये भी देखने में आया है कि एक इलाके के खाने दूसरे इलाकों में प्रचलित हो गए हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि खानों का बाजार अब बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। विश्व पर्यटन संस्था के अनुसार किसी भी जगह पर पर्यटकों के लिए आकर्षण पैदा करने वाली सबसे पहली चीज़ संस्कृति होती है, दूसरे नंबर पर प्रकृति है, और तीसरे नंबर पर खाने हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण पैदा करते हैं।
शोधकर्ता मानते हैं कि पर्यटन में खानों की भूमिका लगभग 15% होती है। औसतन हर पर्यटक 150 से 200 डॉलर तक की रकम खाने पर खर्च करता है। पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार 86% पर्यटक अपने देखे और घूमे हुए इलाकों में जिन कारणों से दोबारा लौट कर जाते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कारण स्वादिष्ट खाने हैं जो लोगों को याद रह जाते हैं।
पौष्टिक और स्वादिष्ट ईरानी खानों का परिचय। घर बैठे सीखिए लज्जतदार ईरानी खाने पकाने की विधि। कार्यक्रम श्रृंखला ईरानी व्यंजन में। हर शनिवार को कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
गीलान के लोगों के दस्तरखान बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, जिसकी वजह यहाँ के खानों में प्रयोग होने वाली चीज़ों की विविधता और खाने पकाने की शैलियों की विविधता है। यहाँ के दस्तरखान बड़े ही समृद्ध होते हैं। इस इलाके की जलवायु की झलक दस्तरखान पर भी साफ नज़र आती है। गीलान के पकवानों की वजह से भी पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है।
गीलान के स्थानीय खानों में कुछ खासियतें होती हैं जो इन खानों के देशों के अन्य भागों के पकवानों से अलग करती हैं। एक खासियत यह है कि यहाँ के खानों में साग और पत्तियों का बड़ा इस्तेमाल है। गीलानी महिला अगर चाहे तो वो महीने में 30 दिन गोश्त का इस्तेमाल किए बगैर साग सब्जियों से अत्यंत स्वादिष्ट खाने तैयार कर सकती है और ये खाने एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होंगे। इन खानों के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, जैसे तुर्श तारे, गजने तारे, शिरीन तारे, कद्दू तारे, अश्कने तारे, पिलास तारे, तुरंग जबानी तारे वगैरह। जिन पकवानों के नाम के आखिर में तारे लगा होता है, उन्हें पकाने में लहसुन की पत्तियों का ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। गिलान प्रांत के बावर्ची खानों की यह खासियत अनेक प्रकार के उन पकवानों का मौजूद होना है जिन्हें फास्ट फूड कहा जाता है। इन खानों की खास बात यह है कि बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं। इन खानों के स्थानीय नामों के आखिर में बीज लगा होता है, जैसे सिरा बीज, हविज बीज, पनीर बीज, खुश्क बीज वगैरह।
गीलान के खानों की एक और खासियत यह है कि इनमें खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल बहुत ही सूझबूझ के साथ किया जाता है, जिसकी वजह से ये खाने से बहुत सी बीमारियों को रोकथाम करने में भी प्रभावी रहते हैं। जैसे यहाँ के लोगों के पूर्वजों को अनुभवों से पता चल गया था कि ह्यूमिडिटी से रोमेटिज्म की बीमारी हो जाती है, तो इसकी रोकथाम के लिए लहसुन बहुत ही प्रभावी होता है। इसीलिए अधिकतर खानों में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो शोधों से साबित हो चुका है कि लहसुन में बहुत से औषधीय गुण होते हैं, अतः इस इलाके के अधिकतर खानों में उसका इस्तेमाल इसी कारण किया जाता है।
गीलान के लोगों के दस्तरखान की एक और विशेषता यह है कि यहाँ के लोगों के पूर्वजों को अनुभवों से ये भी पता चला कि खाने में शामिल किसी एक सामग्री के नकारात्मक प्रभावों को दूसरी कौन सी सामग्री के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे गीलान के दस्तरखान पर इश्पेल मछली नज़र आती है, जिसे कैवियर पैदा होता है। ये मछली बड़ी नमकीन होती है, अतः इससे रक्तचाप बढ़ता है, तो दस्तरखान पर इसके साथ ये हरा बलगा भी ज़रूर होता है जो रक्तचाप को कम करता है। वो इश्पेल मछली के नकारात्मक असर को भी कंट्रोल कर लेता है।
20वीं शताब्दी की शुरुआत में यासिंथ लुइस रश्त में ब्रिटेन के काउंसिल जर्नल थे। उन्होंने अपनी किताब में गीलान के खानों के बारे में लिखा है कि गीलानियों का असली खाना पुलाव और खारी मछली है। इस इलाके में लोगों की बड़ी आबादी रोटी का प्रयोग नहीं करती। रोहू मछली उत्तरी ईरान के पूरे इलाके की बड़ी महत्वपूर्ण मछली है, जो बहुत स्वादिष्ट होती है। अन्य मछलियों की तरह रोहू मछली के भी बड़े गुण और फायदे हैं। इसमें प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी और फॉस्फोरस आदि पाया जाता है। ये मछली कैस्पियन सागर और गीलान व माजंदरान की नदियों में मिलती है। रोहू मछली कुछ ज़्यादा ही पसंद की जाती है। अलबत्ता कुछ लोगों का कहना है कि मेहमानों के लिए ये मछली अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें कांटे बहुत होते हैं, इसलिए इसे खाने में बड़ा समय लग जाता है। रोहू मछली नरम होती है, इसको पकाना ज़्यादा कठिन काम नहीं है। इस मछली को स्वादिष्ट बनाने में इसके पकाने का तरीका और इस्तेमाल کیا جانے والا تیل کافی پربھاوی ہوتا ہے۔ اس سوادشت مچھلی کو کئی طریقوں سے پکایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو بس نمک اور مرچ لگا کر روہو مچھلی کو تیل میں تل لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا پیٹ صاف کر کے اس کے بھیتر سبزیاں اور کچھ انیہ چیزیں ڈال کر پکاتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ مچھلی پکانے کے بارے میں کچھ طریقے بتانے جا رہے ہیں۔
تو دوستو، مچھلی کو دھونے کے بعد اس کی کھال اتار دیجیے، پھر اس کے ٹکڑے بنا لیجیے۔ مچھلی کے ان ٹکڑوں پر نمک، مرچ اور ہلدی لگا دیجیے۔ انہیں کسی برتن میں رکھنے کے بعد اوپر سے کٹی ہوئی پیاز ڈال دیجیے، نیمبو کا رس اس پر نچوڑ دیجیے۔ اس طرح مچھلی کی بسانت ختم ہو جاتی ہے اور ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد مچھلی کو دھو کر رکھ دیجیے اور اس کے پانی کو نکال دیجیے۔ اب ایک برتن میں میدا ڈال کر اس پر تھوڑا کیسر اور نمک ڈالیے اور اسے ملا دیجیے۔ مچھلی کے ٹکڑوں کو اس زعفرانی میدے میں ڈالیے کہ وہ اس پر چپک جائے اور نازک پرت بن جائے۔ کڑاہی میں تیل گرم کیجیے۔ اب لہسن کو رندا کر کے تیل میں ڈال دیجیے، پھر تھوڑی ادرک رندا کر کے تیل میں ڈال دیجیے اور لال ہونے تک پکائیے۔ اب اس کے بعد تیل میں مچھلی کے ٹکڑوں کو ڈالیے اور میڈیم آنچ پر مچھلی کو تلیے۔ مچھلی کو تھوڑی تھوڑی دیر سے پلٹتے رہیے کہ اچھی طرح تل اٹھے۔
روہو مچھلی کو پکانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے ثابت مچھلی لے لیجیے۔ اخروٹ، انار، خوشبو والی پتیاں جیسے دھنیا اور پودینہ بھی لے لیجیے۔ پیاز، نمک، کالی مرچ، تیل، لہسن اور نیبو بھی لے لیجیے۔ سب سے پہلے مچھلی کو خوب اچھی طرح سے دھو لیجیے۔ اس کے بعد اس میں نمک، کالی مرچ اور نیبو ملا دیجیے۔ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیجیے۔ پیاز کاٹ لیجیے اور کڑاہی میں تیل ڈال کر گرم کیجیے، پھر پیاز ڈال دیجیے۔ اب اس میں خوشبو والی پتیاں ڈال دیجیے اور لال ہونے دیجیے۔ اب اس میں رندا کیا ہوا لہسن بھی ملا دیجیے، تھوڑا نمک، تھوڑی مرچ اور ہلدی ڈال دیجیے اور ان چیزوں کو چلاتے رہیے۔ اخروٹ کو مکسر میں ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کر لیجیے۔ اسے بھی کڑاہی میں ڈال دیجیے۔ آدھا کپ انار کی پیوری بھی اس میں ملا دیجیے اور خوب اچھی طرح چلائیے۔ اس کے کڑاہی میں موجود ان چیزوں کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیجیے، پھر مچھلی کا پیٹ بند کر دیجیے۔ اب اسے کڑاہی میں تیل ڈال کر اس میں تل لیجیے۔ ان دونوں ہی شیلیوں سے پکائی جانے والی روہو مچھلی عام طور پر بہت ہی سوادشت ہوتی ہے۔ مچھلی تیار ہو جانے کے بعد اس پر دھنیا اور پودینے کی پتیاں ڈال کر پروسیے۔
دوستو، روہو مچھلی سے ایک اور ڈش تیار کی جاتی ہے جسے گرد بیچ کہتے ہیں۔ اسے عام طور پر مٹی کے برتن میں پکایا جاتا ہے۔ پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ مچھلی کو اچھی طرح صاف کر کے دھو لیتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں نمک اور مرچ لگا کر مچھلی کا سر اور پونچھ دھاگے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر باندھ دیتے ہیں۔ مچھلی سرکل کی شکل کی ہو جاتی ہے۔ اب ایک کڑھائی میں پیسا ہوا لہسن، پیاز اور خوشبو والی پتیوں کے ساتھ ڈال کر اسے چلاتے ہیں۔ اب اخروٹ کو گرائنڈ کر کے پیوری کے ساتھ اس میں ڈال لینا ہے۔ جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے مچھلی کے پیٹ میں بھر دیا جاتا ہے۔ اب مٹی کے برتن، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ دیا جاتا ہے اور مچھلی کو ان کے اوپر رکھ کر پھر دو چمچے پانی پتھروں پر ڈال کر انہیں چولہے پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ مچھلی بھاپ میں پک جاتی ہے اور بہت سوادشت بنتی ہے۔ تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انومتی دیجیے۔
دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا اور اب آپ کی سیوا میں پرستوت ہے کارکرم اچھی عادتیں۔
اچھی عادتیں۔
دوستو کارکرم اچھی عادتیں کی ایک انے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور غائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو پچھلے کارکرم میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ اپنی ویکتیگت پرتیبھاؤں سے اوگت ہوں گے تو پرگتی اور سفلتا کی اور آپ آسانی سے بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے میں اپنی کمزوریوں کا پربندھن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنی طاقت اور پرتیبھا کو سمجھ کر آپ ادھک سفلتا پراپت کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ویکتی پورن نہیں ہوتا ہے۔ ہم سبھی دوسروں کی خوب آلوچنا کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی۔ آتم گیان ہمیں اپنی خامیوں کو دیکھنے اور اپنی غلطیوں کو سویکار کرنے میں مدد کرتا ہے۔
جب آپ خود کو بہتر ڈھنگ سے پہچانتے ہیں تو آپ اپنے جیون کے لیے صحیح نیم بناتے ہیں اور ان سدھانتوں کے انوسار کاریہ کرتے ہیں جو آپ کو اچت نرنے لینے اور جیون کی سمسیاؤں کو حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آتم گیان سے انسان اپنی خامیوں کو سویکار کرنے کا ساہس پیدا کرتا ہے۔ خامیوں کو پہچان کر انہیں دور کرنے کا پریاس کیا جا سکتا ہے۔ آتم گیان حاصل کرنے کے مارگ میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ صرف کچھ لوگ ہی آتم گیان حاصل کر پاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک رکاوٹ خود کا سامنا کرنے سے ڈرنا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ورشوں سے ہم نے اپنے دماغ میں جو تانا بانا بنا ہے اور اس کے ساتھ جیون ویتیت کیا ہے وہ ڈھہ جائے گا۔
کچھ لوگ اپنے لیے ایک سرکشت دائرہ کھینچ لیتے ہیں، وہ کسی بھی قیمت پر اس دائرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اپنے جیون میں اتھل پتھل پسند ہی نہیں کرتے، اس لیے وہ عام طور پر ایک جیسا جیون جینا چاہتے ہیں اور ایک ڈھرے پر ہی چلنا چاہتے ہیں، اسی لیے آتم گیان سے وہ دور رہنا چاہتے ہیں۔
آتم گیان حاصل کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ خود کو کتنا پہچانتے ہیں اور آپ کے من میں کیا چل رہا ہے۔ آتم گیان کے لیے گہرائی سے چنتن کرنا ہوگا اور ہر دن اپنے ویوہار پر نظر رکھنی ہوگی تاکہ خود کے بارے میں اچھی جانکاری پراپت کر سکیں۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور خود کو پہچاننا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھنے اور سوچنے سے ہی آتم گیان حاصل ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود کو پہچاننے کے لیے آتم گیان کی پہلی کو حل کرنا ہوگا۔ اس پہلی کو سلجھانے کے لیے ہمیں اپنی روچی، پرتیبھا، وشواس، مولیوں اور اپنی شخصیت کو جاننا ہوگا تاکہ خود کے بارے میں پوری جانکاری پراپت ہو سکے۔
آتم گیان پراپتی کے کئی طریقے بتائے گئے ہیں، لیکن اگر سبھی لوگوں کے لیے کوئی ایک نسخہ ہوتا تو یہ کام بہت آسان ہو جاتا۔ حالانکہ اس بارے میں جتنے بھی شودھ ہوئے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آتم گیان کا ایک ہی طریقہ سبھی کے لیے پریاپت نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود جتنے بھی راستے سجھائے گئے ہیں ان کے بیچ کافی سمانتائیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا چرن ایگو پیرنٹ ہے۔ اس چرن میں زندگی میں ہمیں جو کچھ سنتوش ملتا ہے وہ ہے ماں باپ کی خوشی۔ دراصل جب ہم اپرسن ہوتے ہیں، جب ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہیں، اور جب وہ ہمیں پروتساہت کرتے ہیں اور ہماری سراہنا کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ ایسا صرف بچپن میں ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس چرن کو عمر کے کسی بھی پڑاؤ سے سیمت نہیں کر سکتے۔
اگر پہلے چرن میں ہم خود کو ثابت کرنے اور ماں باپ کے دشا نردیشوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور پریاس کرتے ہیں تو دوسرے چرن میں، یعنی ایگو ورلڈ میں، ہم دنیا کے سامنے خود کو ثابت کرنے میں پورا دم خم لگا دیتے ہیں۔ इस चरण में दोस्तों द्वारा हौसला बढ़ाना और अजनबियों की प्रशंसा का बहुत महत्व होता है। संभव है कि इस चरण में कोई खुद को साबित करने के लिए और दूसरों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कोई अनैतिक या गैर कानूनी काम कर बैठे। वास्तव में इस चरण में दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत होती है। हम एक आइडियल जॉब या उच्च पद हासिल करने के लिए प्रयास इसी चरण में करते हैं।
दोस्तों, आत्मज्ञान का तीसरा चरण है ईगो सेल्फ। ये चरण किसी भी इंसान के विकास का सबसे दिलचस्प चरण है। जब हम इस चरण में कदम रखते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया में खुद से ज़्यादा हम किसी को स्वीकार नहीं करते। यहाँ खुद को स्वीकार करने का मतलब अहंकार या अभिमान नहीं है, बल्कि इस चरण में हम खुद को अच्छी तरह से जानने लगते हैं। हम अपनी खूबियों और खामियों को जानते हैं और सिर्फ उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं जिसे अपनी बराबर समझते हैं या अपने से ऊपर समझते हैं। जब हम इस चरण में कदम रखते हैं तो समझते हैं कि अब तक हमने दूसरों को खुश करने के लिए जो भी काम किए, अब हम वे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे खुद हमें नुकसान पहुंचता है। इसके विपरीत हम कई काम ऐसे करते हैं क्योंकि हमारा मन ऐसा करने के लिए हमसे कहता है और हमें इस बात की परवाह नहीं होती है कि दूसरे इस बारे में क्या सोचते होंगे।
आत्मज्ञान का अंतिम चरण ईगो गॉड है। इस चरण में हम खुद को भी पीछे छोड़ देते हैं। इस चरण में पहुंचकर लोग कहते हैं कि अब हमारे लिए अगर किसी चीज़ का कोई महत्व है तो वो है खुदा को राजी करना और उसकी प्रसन्नता हासिल करना। ये बात सही है कि उस वक्त की जब हम खुदा या ईश्वर को सही रूप में परिभाषित करें और उसे इस ब्रह्मांड का रचयिता और हर शक्ति से ज़्यादा शक्तिमान माने। इस चरण में इंसान अपने सीमित वजूद से निकलकर एक असीम वजूद से जा मिलता है। अपनी पहचान के इस उतार चढ़ाव भरे और घुमावदार चरण के अंत में हमें पता चलता है कि ये समस्त चीज़ें उस शक्ति के मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं जिसने जीवन दिया है। इस चरण में पहुंचकर हमें असली खुशी, प्रेम, संतोष और ईमान का सही एहसास होता है। यहाँ पहुंचकर हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती है। जो शख्स इस चरण में पहुंच जाता है वो फिर अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी शांति का वातावरण उत्पन्न करता है।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आत्मज्ञान से हमें कल्याण का मार्ग मिलता है। एलन द बॉटन के अनुसार आत्मज्ञान का अभाव आपको गलत रास्ते पर डाल सकता है। इस अर्थ में कि आत्मज्ञान के अभाव में आप असुरक्षा का और बेचैनी का एहसास करते हैं या आप बहुत आसानी से मौजूदा परिस्थितियों के बहाव में बह जाते हैं। इसके अलावा अवांछित आदतों को त्यागने में हमें दुश्वारी होती है। हमारा सामना अनावश्यक चुनौतियों और घबराहट से होता है। परिणाम स्वरूप हम गलत नौकरी चुनते हैं या गलत महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने लगते हैं। अंत में हम अपना समय और पैसा उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमें वास्तविक खुशी प्राप्त नहीं होती।
आत्मज्ञान के अभाव के परिणामों के मद्देनजर आत्मज्ञान का महत्व हमारे लिए अधिक उजागर हो जाता है। यहाँ हम आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाने के लिए कुछ बिंदुओं का उल्लेख कर रहे हैं। जब आप जो कुछ हैं उसे बयान कर सकें तो आपको ज्यादा खुशी हासिल होगी और इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आप अपनी इच्छाओं तक पहुँच सकते हैं। आत्मज्ञान के महत्व को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अपने अंदर के विरोधाभास पर ध्यान देना चाहिए। जब आपका व्यवहार आपकी आंतरिक भावनाओं के अनुसार होता है तो आपके भीतर घबराहट और बेचैनी कम होती है। जब आप खुद को पहचानने लगेंगे तो हर मौके पर सही फैसला कर सकते हैं। چھوٹے فیصلوں سے لے کر جیسے کہ کسی شرٹ کی خریداری سے لے کر بڑے فیصلوں جیسے کہ شادی اور جیون ساتھی کے چین تک آپ کے سامنے ایک سپشٹ نردیش ہوگا جس سے لابھ اٹھا کر آپ کٹھن افسروں پر بھی صحیح نرنے لے سکیں گے۔
خود پر قابو پانا بھی آتم گیان کے مہتو کو درشاتا ہے۔ جب انسان خود اپنے بارے میں صحیح جانکاری رکھتا ہوگا تو وہ سمجھ سکے گا کہ کون سی چیز اسے پروتساہت کرتی ہے، اس سے اسے بری عادتوں سے چھٹکارا پانے اور اچھی عادتوں کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ اس سے آپ کو ایسی انتردرشٹی پراپت ہوگی کہ آپ اس کی مدد سے مولیوں اور ادیشوں کو پہچان سکیں گے، جس سے آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا۔ اسی طرح سے اس وشیشتا سے آپ کو سماجک دباؤں کے مقابلے میں پرتیرودھ کرنے کی ادھک شکتی پراپت ہوگی۔ جب آپ کو اپنے مولیوں اور پراتھمکتاؤں کے بارے میں گیان ہوگا تو آپ جھجک چھوڑ کر آسانی سے نہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی پرکار آپ اپنی خامیوں اور سمسیاؤں کو پہچان کر دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ انت میں اس سے آپ کو بہت ادھک آنند اور سنتوش پراپت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت سے اوگت ہو جاتے ہیں۔
تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، اور اب سمے ہو چکا ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ دشمن دیش کی شکتی کو نراشا اور کمزوری میں بدلنے کا پریاس کر رہا ہے۔ ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان کا کہنا ہے کہ تہران نے کوٹنائک کھیتر میں اہم سفلتائیں ارجت کی ہیں۔ بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کے نوبل پرسکار کی فیک خبریں بھارتی میڈیا میں خوب چل رہی ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کے سمرتکوں اور پولیس کے بیچ جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں۔ دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں ایوم پرتکریاؤں سے ہمیں اوش اوگت کرائیے گا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir/hi۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔